ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र प्रसाद पांडे ने प्रदेश सभा से किया विश्वास का मत प्राप्त। काठमांडू घाटी समेत देश के मुख्य शहरों में बड़ी ठंड। दूसरी ओर वायु प्रदूषण में भी हुई बढ़ोतरी। राष्ट्रीय जनगणना 2078 के लिए सभी तैयारियां हुई पूरी। केंद्रीय तथ्यांक विभाग ने दी जानकारी। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 25 करोड़ के पार। अब समाचार विस्तार से। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र प्रसाद पांडे ने प्रदेश सभा से विश्वास का मत प्राप्त किया है। आज प्रदेश सभा की बैठक में मुख्यमंत्री पांडे ने विश्वास का मत प्राप्त किया था। प्रदेश सभा की बैठक में 104 प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित थे। उनमें से 59 सदस्यों ने मुख्यमंत्री पांडे के पक्ष में मत डाला था, जबकि उनके विपक्ष में 43 मत डाले गए थे। वहीं नेपाल मजदूर किसान पार्टी के 2 प्रदेश सभा सदस्य तटस्थ रहे थे। इसी तरह राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 2 प्रदेश सभा सदस्य मतदान में अनुपस्थित थे। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा की कार्यशैली को लेकर अन्य न्यायाधीशों के इजलास में बैठने से मना करने के बाद आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रभावित रही। सुप्रीम कोर्ट में आज के लिए निर्धारित 6 में से 2 इजलास ही बिठाए जा सके। प्रधान न्यायाधीश जबरा ने खुद शामिल इजलास समेत कुल 6 इजलासों में बंदी प्रत्यक्षीकरण के 7 मामलों की पेशी तय की थी। इनमें से सिर्फ 2 मामलों की ही सुनवाई हो सकी। बता दें कि प्रधान न्यायाधीश से निकास देने की मांग के साथ ही अघोषित रूप में निरंतर इजलास बहिष्कार करते आ रहे न्यायाधीशों ने प्रधान न्यायाधीश के इजलास छोड़ने पर ही फिलहाल के लिए सिर्फ बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले की सुनवाई कर सकने की अड़ान रखी है। पिछले हफ्ते से काठमांडू घाटी का तापमान घटने के कारण सुबह शाम ठंड अधिक महसूस होने लगी है। न्यूनतम तापमान में कमी आने के साथ ही हवा की गुणवत्ता भी काफी कम हो जाने के कारण यहां की हवा को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। काठमांडू का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री पर उतरने के कारण घाटी की हवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताई गई है। केंद्रीय तथ्यांक विभाग ने इसी कार्तिक के 25 गति से मार्गशीर्ष 9 गति तक होने जा रही राष्ट्रीय जनगणना 2078 की तैयारी पूरी कर ली है। राष्ट्रीय जनगणना के संबंध में आज मीडिया एक्शन नेपाल द्वारा काठमांडू में आयोजित संचार अभिमुखीकरण कार्यक्रम में विभाग के महानिदेशक नेमिन लाल श्रेष्ठ ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि विभिन्न जातियों, भाषाओं, लिंगों, धर्मों, वर्गों और पक्षों के नए तथ्यांक लाने के हिसाब से जनगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। गृहमंत्री बाल कृष्ण खाड़ ने कहा कि छोटी सी अवधि में अच्छे कामों को अंजाम देते हुए मौजूदा सरकार सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। नेपाली कांग्रेस धनुषा द्वारा आज जनकपुर धार में आयोजित कार्यक्रम में गृहमंत्री खाड़ ने कहा कि सरकार ने विद्युत की कीमत में कमी की है, साथ ही गरीब परिवारों को 10,000 राहत देने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा निकायों में कार्यरत सभी तहों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले राशन भत्ता में बढ़ोतरी कर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हेलो,
के गर्दै छौ?
हाम्रो बिहेको शपिङको लागि आएको नि बाबा मम्मी सँग।
ए हो र, अनि मेरो लागि के किन्दै छौ?
बाबा मम्मी यति हुनुहुन्छ के सोच्नुहुन्छ होला उहाँले? मलाई त कस्तो लाज लाग्छ। भरे राति बोलौँ न ल। मेरो हुनेवाला श्रीमानज्यूलाई यति पनि थाहा छैन कि क्या हो? एनटीसी को अनलिमिटेड नाइट भोइस प्याक राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म।
अब रात तपाईको नेपाल टेलिकम राष्ट्रको
संचार। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश बनाने का स्पष्ट विजन और दृष्टिकोण सिर्फ एमाले के पास है, इसलिए आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी एमाले ही बनेगी। एमाले द्वारा आज विराटनगर में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली ने कहा कि भले ही एमाले सरकार ने राष्ट्र के हित में काम किया है, लेकिन सरकार को गिराने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे गए थे। नेकपा एमाले का आगामी 10वां राष्ट्रीय महाधिवेशन में 2077 चैत तक पार्टी की सदस्यता लेने वाले संगठित सदस्य ही प्रतिनिधि के तौर पर सहभागी हो पाएंगे और साथ ही मतदान भी कर पाएंगे। पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा जारी अंतर पार्टी निर्देशन में ये बात उल्लेख है। बता दें कि महाधिवेशन में 1999 प्रतिनिधि सहभागी होंगे। विशेषकर तराई मधेश के व्रतालुओं के ने नहाए खाए की विधि अपनाते हुए छठ पर्व की शुरुआत की है। कल यानी कि कार्तिक शुक्ल तृतीया के दिन व्रतालु अरबा अरबाइन की विधि करेंगे। पर्व के मुख्य दिन यानी कि षष्ठी तिथि में निराहार व्रत लेकर शाम को ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सप्तमी के दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व की समाप्ति की जाती है। देशभर में आज कोरोना के 390 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 425 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। वहीं आज 5 संक्रमितों की मौत हो गई। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी है। बहरहाल नेपाल में 7,654 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। चीन की जनमुक्ति सेना ने नेपाली सेना को सहयोग स्वरूप कोरोना वैक्सीन वेरोसिल का 3,00,000 डोज मुहैया कराया है। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा को जंगी अड्डा में आज आयोजित कार्यक्रम में नेपाल के लिए चीनी राजदूत हो यानछी ने वैक्सीन का डोज लगायत स्वास्थ्य सामग्रियां हस्तांतरित की। भारत दौरे के सिलसिले में प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भारत के सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे के निमंत्रण पर प्रधान सेनापति शर्मा कार्तिक तेज गति से 26 गति तक भारत दौरे पर रहेंगे। भारत दौरे के दरमियान प्रधान सेनापति शर्मा को भारतीय राष्ट्रपति से भारतीय सेना का मानार्थ महारथी दर्जा से सम्मानित किया जाएगा। ये जानकारी सैनिक जनसंपर्क तथा सूचना निदेशालय ने दी है। बता दें नेपाल और भारत के बीच प्रधान सेनापति को मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान करने की परम्परा है। सलियान और दांग के बीच की सीमा पर जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से एक की मौत हो गई, जबकि अन्य 19 लोग घायल हुए हैं। सलियान की कालीमाटी गांव पालिका 3 कालीमाटी से दांग के तुलसीपुर की ओर जा रही जीप दांग बबई गांव पालिका वार्ड नंबर 2 इक्लेवर के नजदीक आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। हादसे में सलियान कालीमाटी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के देव बहादुर सुनार की मौत हो गई, ये जानकारी पुलिस ने दी। हादसे में घायल हुए 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। घायल सभी का राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर में इलाज चल रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा आज 25 करोड़ पार कर गया। पूर्वी यूरोप में कोविड के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। एक विश्लेषण के अनुसार पिछले 3 महीने के दौरान कोरोना के औसत मामलों में 36% की गिरावट आई है, लेकिन उच्च संक्रामक डेल्टा वेरिएंट की वजह से अब भी 90 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 5 करोड़ लोगों के संक्रमित होने में करीब 1 वर्ष लगा था, जबकि 240 में से 55 देशों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इनमें रूस व यूक्रेन आदि शामिल हैं। दुनिया भर में रोजाना आने वाले कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में यूरोपीय देशों की भागीदारी आधी से अधिक है। इन देशों में 4 दिनों में करीब 10,00,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र प्रसाद पांडे ने प्रदेश सभा से किया विश्वास का मत प्राप्त। काठमांडू घाटी समेत देश के मुख्य शहरों में बड़ी ठंड, दूसरी ओर वायु प्रदूषण में हुई बढ़ोतरी, राष्ट्रीय जनगणना 2078 के लिए सभी तैयारियां हुई पूरी, केंद्रीय तथ्यांक विभाग ने दी जानकारी और दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 25 करोड़ के पार। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।